हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा थी कि जगह जगह विश्व में श्री वृंदावन धाम स्थापित किया जाए, ताकि जो लोग वृंदावन धाम मूल मथुरा में जो है वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, या कोई कारण है, या किसी भी वजह से नहीं आ सकते, दूर है, तो उनको अपनी अपनी जगह पर श्री वृंदावन का अनुभूति प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रयास उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में किया था। अब 3,000 एकड़ में उन्होंने 7 पर्वत वाला एक लैंड लिया था, जिसमें 7 पर्वत थे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो उन्होंने वो डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस पर्वत पे ये मंदिर होना चाहिए, ऐसे उसमें से काफ़ी बना भी, यशस्वी भी हो गया, लेकिन कुछ समय बाद में थोड़ा थोड़ा सा अयशस्वी भी हो गया। लेकिन आज भी न्यू वृंदावन के नाम से वेस्ट वर्जीनिया में हमारा एक सेंटर है इस्कॉन का। आज 1500 एकड़ जगह है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं, ऐसे ही बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन बनाया हुआ है वहाँ पर। उसके बाद में प्रभुपाद जी की इच्छा ये नहीं थी कि एक ही जगह बनाया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बना हुआ है छोटा सा, एक हंगेरी में बना हुआ है, और एक यहाँ पर आपके हमरापुर वाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बना है। का कारण यह है कि जो लोग शहर में बिजी रहते हैं, बहुत अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता है उनको, उनको थोड़े समय पर ब्रज का एक झलक दिखाई पड़े। इसलिए यहाँ पर देखो 7 मंदिर वृंदावन के प्रकट किए हैं, यमुना जी को प्रकट किया है, गोवर्धन को प्रकट किया है, बरसाना प्रकट किया है। अगली बार आएंगे तो आपको और मिलेंगे, काम्यवन प्रकट हो जाएगा, नंदगांव प्रकट हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ प्रकट होने वाला है। उससे आपको कुछ समय में पूरे वृंदावन के दर्शन का लाभ मिल सकता है, पूरी कथाएँ, पूरे स्थान का दर्शन होगा, सकता है छोटी मात्रा में होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो मुझे गुरुदेव ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने ऐसा आदेश दिया था कि आप यहाँ पर आइए और कथा करते रहिए लोगों के लिए। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, गुरु जी का आदेश पालन कर रहा हूँ और आप लोगों को कथा बता रहा हूँ। ऐसे हर महीने में हमारे शेड्यूल यहाँ बने हुए हैं, हर महीने में 2 दिन वीकेंड में शेड्यूल्स बने हुए हैं। और मैं वैसे भक्ति वेदांत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का उपसंचालक हूँ, डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ और फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ, और मैं फुल टाइम एम्प्लॉय भी हूँ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का। और हमारे अस्पताल के 12 सेंटर्स हैं, वो महाराष्ट्र में सब जगह फैले हुए हैं, और 2 सेंटर्स हमारे मथुरा ज़िले में हैं, एक वृंदावन में है और एक बरसाना में है। बरसाना में आई हॉस्पिटल है और वृंदावन में हमारा हॉस्पिस है। लास्ट स्टेज के लोग होते हैं ना, वो जिसको कहते हैं टर्मिनली इल पीपल, असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं और कुछ समय में उनकी मृत्यु होने वाली है, ऐसे लोगों के लिए एक जगह बनाई है, भक्ति वेदांता हॉस्पिस, वृंदावन परिक्रमा रोड। और बरसाना जो राधा रानी का घर है, वहाँ पर आँखों का अस्पताल बनाया है, और वही 26 साल हो गए उसको, वहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं। अभी 5 एकड़ की जगह ली है और कुछ ही समय में वहाँ पर विशाल अस्पताल बनाने का हमारी योजना है। तो ये सब काम में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारी हॉबी है कि भगवान के बारे में कथा करने की। तो जब हम विद्यार्थी थे तभी हम हरे कृष्ण संस्था में जुड़ गए, आज उसको 33 साल हो गए, और तब से भगवान की लीलाओं के विषय में बड़ा आकर्षण है, और आप लोग आते हैं तो उस बताने का मौका भी मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कार्यक्रम भगवान की कथा के आप लोग भी आयोजित कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर साल भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की तरफ से, हमारा हॉस्पिटल बहुत अद्भुत हॉस्पिटल है, इसमें आध्यात्मिक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर, और जैसे नर्सिंग लोग, नर्स लोग होते हैं ना, नर्सेस हर एक बेड पे अपनी सेवा देते हैं, उनके देयर आर बेड एलोकेटेड बेड्स फॉर देम, वैसे हमारे सारे हॉस्पिटल के बेड्स जो हैं वो स्पिरिचुअल केयर असिस्टेंट में बटे हुए हैं, और हर बेड पे हमारे असिस्टेंट जाके पेशेंट से बात करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलता फिरता एक मंदिर है जो हर एक दिन सब मरीजों को जाके मिलता है, उसमें जगन्नाथ जी विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सब मोबाइल टेम्पल, एक फिक्स टेम्पल भी है बड़ा जगन्नाथ के विग्रह उसके अंदर, और एक मोबाइल टेम्पल है। वो हर रोज़ 4 और 8 के बीच में सारे OPD, जितने भी OPDs हैं, जितने भी IPDs हैं, ICU है, जनरल वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, सब जगह मरीज को जाके दर्शन देते हैं। मरीज उनको पड़े पड़े उनको फूल अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं, और 4 घंटे के बाद फिर नीचे आके मंदिर खड़ा रहता है। ऐसा हमारा डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट की ओर से हर साल अनेक यात्राएं निकलती हैं, उसमें से दिसंबर में बड़ी यात्रा निकलती है, और छोटी मोटी यात्राएं जैसे अभी गोवर्धन इको विलेज आए, 2 दिन की यात्रा यहाँ होती है, हमारे एम्प्लॉयज, पेशेंट्स और स्टाफ मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आते हैं, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर, मैंने कभी अभी ये हमारी मेरी 9वीं यात्रा है, 8 यात्रा मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 9वीं यात्रा में आप लोग आए, और नासिक है, पंडरपुर है, देहू आलंदी है, ऐसे हमारी स्मॉल यात्रा होती है। और बड़ी यात्रा जो है वो वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका, साउथ इंडिया, ऐसे यात्रा होती है। तो इस साल की यात्रा जो है वो 26 से 31 दिसंबर को होगी और उडुपी क्षेत्र में होगी। आप जानते हैं उडुपी कहाँ पर है? उडुपी क्षेत्र दक्षिण भारत में कर्नाटक में है, जिस गांव से मेरा जन्म है, मतलब मेरा फैमिली का गांव है, वो हमारा खुद का गांव है। उस गांव में भगवान की अद्भुत लीलाएँ हैं, कृष्ण का मंदिर है और बहुत सारी सुंदर लीला है। तो वो सारे सुंदर लीलाओं का दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे, उसमें आप सब लोगों को निमंत्रण है, वी आर वेलकमिंग यू टू ज्वाइन अस। उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसे कथा के कार्यक्रम आपके घर पे भी कर सकते हैं। समझो आपकी शादी की सालगिरह है, आपके बेटे का बर्थडे है, या कोई आपकी लड़की की रिंग सेरेमनी है, या आपका लड़का अभी कुछ MBBS पास हो गया, या इंजीनियरिंग पास हो गया, या विदेश जा रहा है, जैसे भी आनंद की घड़ी आपको उसको सेलिब्रेट करना है, तो ऐसे खुशी की घड़ियों पे आप अपनी घर में कथा रख सकते हैं। या आपके माता पिता का देहांत हो गया, उनकी स्मृति में आपको कुछ कार्यक्रम करना है, उनके श्राद्ध के दिन में करना है, तो भी हमें आप बुला सकते हैं। और एक दिन की हो, 3 दिन की हो, 7 दिन की हो, ऐसी कथाएं हम कर सकते हैं। एक ऐसा सुंदर कंसेप्ट मैंने सोचा है जिसका नाम है ब्रज लीला सप्ताह। उसका मतलब ब्रज में बहुत मेन स्थान है, जैसे एक मेन स्थान वृंदावन है, उसमें अनंत स्थान है, उस स्थान में एक स्थान नंदगांव है, वहाँ पर अनंत स्थान है, एक स्थान बरसाना है, एक स्थान गोवर्धन है, एक स्थान काम्यवन है, एक मथुरा है, ऐसे दूर दूर तक बहुत सारे स्थान हैं। वो स्थान के बारे में एक जगह बैठकर कथा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठे हुए हैं तो एक दिन वृंदावन की कथा कर सकते हैं, एक दिन नंदगांव की कथा कर सकते हैं, एक दिन केवल बरसाने की कथा कर सकते हैं, 3-4 घंटे कथा कर सकते हैं, एक दिन गोवर्धन की 4 घंटे कथा कर सकते हैं, ऐसे विस्तार में कथा कर सकते हैं। उसको व्रज लीला सप्ताह कहते हैं। चाहे वो 4 दिन का करो, 7 दिन का करो, आपका पसंद के स्थान का बताओ कि हमको इस स्थान की कथा सुननी है, तो ऐसा शेड्यूल करके हम कथा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही लीलाओं का सप्ताह जगन्नाथपुरी के बारे में करो, या द्वारका के बारे में करो, या जयपुर के बारे में करो, या दक्षिण भारत के बारे में करो, ऐसे आपको जो स्थान पसंद है उस स्थान की लीला एक जगह बैठ कर वर्चुअल टूर कर सकते हैं कथा के रूप में, और उन स्थानों का वीडियो स्लाइड्स आपको दिखा सकते हैं। तो बैठे बैठे आप अपने घर में बैठकर उन स्थानों का दर्शन करके उसकी लीलाओं का महात्म्य सुन सकते हैं, ये भी एक अवसर है आपको। उसके बाद में अगर आपको इच्छा है कि जैसे अब अभी आप लोग कैसे ऑनलाइन आए ना, ऑनलाइन आपने देखा और पता चला कि कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट है, आपने रजिस्टर किया और आप आ गए, ऐसे अगर आपकी इच्छा है कि आपके पास 50 फ्रेंड्स हैं, आपका परिवार 50 लोगों का है, गाँव का, यहाँ का मिलके, और आपको यहाँ पर अलग तरीके से अपने खुद के लिए आना है, तो हमारे प्रभु जी यहाँ पर बैठे हैं, राकेश पांडा, इनको आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा समय लेकर वो 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितना आपके पास समय है उतना यहाँ पर, आज जो आपने कथा सुनी है ना बहुत संक्षेप में सुनी है, समय मिलेगा तो और विस्तार में बता सकते हैं। तो वैसे आपको समय 2 दिन का है, 2 दिन का रिट्रीट प्लानिंग कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, 4 दिन का भी कर सकते हैं। राकेश पांडे जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमसे कोऑर्डिनेट करके समय लेकर आपका ये टूर जो है उसका अच्छी तरह से प्लानिंग करके फिक्स कर सकते हैं। और फिलहाल हरे कृष्णा TV नाम का हमारा TV अभी शुरू हो गया है, कितने लोगों को पता है हरे कृष्णा TV? इसका प्ले स्टोर में जाएंगे आप तो वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और ये TV पर अभी राम कथाएँ चल रही हैं, बहुत लोगों की चल रही है, और हम भी उसमें प्रवचन देते हैं। अभी 7 दिन का रामलीला का सप्ताह भी उसमें हो गया है, अभी भी चालू है, आज भी रामकथा चल रही है। तो वो हरे कृष्णा TV भी आप देखिए फ्री डाउनलोड करके, जब चाहे आपको उसमें खोल के हाथ में ही आपको चलते फिरते आप उसकी कथा सुन सकते हैं, हरे कृष्णा। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब इतना माहौल क्यों खड़ा कर दिया है, ओवर 100 acres जगह है हमारी यहाँ पर, 100 से ऊपर गऊ की, देसी गायों की बहुत सुंदर गौशाला है, 1 करोड़ लीटर का यहाँ पर जलाशय बनाया है, टैंक जिसको गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है, और ऑर्गेनिक खेती है, बिना किसी खाद के केवल गोबर खाद इस्तेमाल करके हम खेती करते हैं, और करीब करीब 15 से 20 प्रकार के चावल पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल बनाते हैं, इन गाय के दूध का घी बनाते हैं, और गाय के वस्तु है ना, गोमूत्र है, गोबर है, ऐसे कई वस्तु बनाते हैं। उसका एक स्टॉल वहाँ पर खुला है मंदिर के नीचे, आप जाने के पहले ज़रूर वहाँ पर दर्शन कीजिए, और कई ऐसी अद्भुत वस्तुएँ वहाँ पर हैं जो प्राकृतिक रूप में उनका निर्माण किया गया है। आप खरीद भी सकते हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए तो इनको आप बोलिए, जाने के समय वहाँ पर स्टॉल लगा देंगे। रोज़ लगता नहीं, वो ऑन डिमांड लगता है। यहाँ पर बने हुए चीकू, यहाँ पर बने हुए पपीते, वेजिटेबल्स का स्टॉल लगता है, वो आप खरीद सकते हो। और ये तो एक एक्सटर्नल बेनिफिट्स है, ऑर्गेनिक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दुकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धूप मिलेगा, गौमूत्र अर्घ मिलेगा, वो सब ठीक है। लेकिन ये उद्देश्य क्या है इसका बनाने का? उद्देश्य यह है कि आप लोग वृंदावन धाम का अनुभूति करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें, एक प्राकृतिक जीवन जिए, भगवान की भक्ति में जीवन जिए, और जो कुछ पहले समझो कुछ खा पी रहे थे उसको छोड़कर केवल भगवान का प्रसाद खाएं, भगवान का नाम कीर्तन करें और जीवन को धन्य करें, इसलिए बनाया गया है। हाँ, नहीं तो रिसोर्ट्स तो बहुत सारे हैं ना, वहाँ शराब भी मिलती है, मांस भी मिलता है, डांस भी होता है, डिस्को भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये रिसोर्ट जो है वो स्पिरिचुअल रिसोर्ट है, इसको स्पिरिचुअल रिट्रीट कहते हैं। इसमें अपनी आत्मा की जो प्रवृत्ति है उसको आप जागृत कर सकते हैं। यू कैन अवेकन द ओरिजिनल टेंडेंसी ऑफ योर सोल, यू कैन नो योर सेल्फ हु यू आर, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंगली, मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। अदरवाइज इस जीवन में जो भी मेहनत करेंगे हम, जो भी प्राप्त करेंगे, वो सब क्या होगा? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होगा। आज तक आपने जो भी कमाया हुआ है, कीर्ति कमाई हुई है, यश कमाया हुआ है, संपत्ति कमाई हुई है, प्रॉपर्टी कमाई हुई है, धन दौलत कमाई हुई है, सोने जेवरात कमाए हुए हैं, मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होगा। और ये जगह इसलिए बनाई गई है ताकि आपको उस धन का पता चले जो धन आप अपने साथ में मृत्यु के समय लेके जा सकते हो, वो है स्पिरिचुअल वेल्थ, द वेल्थ ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर द लॉर्ड, जो आपके साथ जाएगा और आपकी परम गति को आपको प्राप्त कराएगा। जहाँ से आप आए हो, जिस जगह के भूल कर यहाँ पर आए हो, उस जगह पर वापस आपको जाने के लिए योग्य बनाएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जीते हुए उस धन को प्राप्त करने में समय मत बर्बाद करो जो आपको आखिर में यही छोड़ के जाना है। हाँ, रिटायरमेंट तक आप काम करेंगे, फिर उसके बाद बीमार पड़ के बीमारी का इलाज करते रहेंगे, और अंतिम क्षण आएगा तो सारा मेहनत का कमाई बच्चों के इसके उसके नाम पे चले करके आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। संत लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, इतना कीमती मनुष्य जीवन दिया है, जीवन की परमोच्च प्राप्ति करने के लिए इसमें सात प्रकार का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है। परमोच्च गति क्या है जीवन की? भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान के चरणों का सहारा और उनकी भक्ति प्राप्त करना, और ये प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आप लोगों को विनती है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर अधिक निवास कीजिए। अगर अगली बार आएंगे तो आपको नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी, ये मत समझना कि वही कहानियाँ सुनाएंगे, कुछ बेसिक कहानियाँ सुनाएंगे, ABCD, जैसे आपका नाम क्या है, पता क्या है, वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे भगवान के बारे में। लेकिन भगवान की अनंत लीलाएं हैं, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो आपको अगली बार आने के बाद कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, नई कहानियाँ बताएंगे। आप आते रहिए, जैसे धाम में हम लोग एक बार जाते नहीं हैं, धाम में जाकर वही कथाएँ बार बार सुनते हैं। ये सब स्थाने हेरिब्यो आमी प्रणयी भक्त संगे, यानी भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके संग में भगवान के उन्हीं स्थानों पर बार बार जाकर भगवान के लीलाओं की कथा हम श्रवण करते हैं, ताकि हृदय की शुद्धि हो जाती है, भगवान का आश्रय प्राप्त होता है और हृदय में भगवान की भक्ति स्थिर हो जाती है। तो जीवन ही भगवान की भक्ति के लिए, जीवन ही भगवान के उनके नाम के ध्यान के लिए, उनकी लीलाओं के श्रवण करने के लिए। बाकी सब जीवन तो चलते रहेगा ऐसे, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठराशयनम, बार बार माता के गर्भ में आना है, बुढ़ापे का बीमारी का कष्ट भोगना है, मृत्यु का दर्द सहन करना है, फिर दुनिया में दोबारा आना है, फिर कष्ट सहन करना है, माया के लत्ता प्रहार सहन करना है। ये मौका है हमारे लिए, भाग्य हमारा है कि हमको ऐसा परिचय हुआ है, संपर्क प्राप्त हुआ है। हमारा भी कभी विद्यार्थी थे, तभी कोई भक्त लोग हॉस्टल में आए थे हमारे, कुछ कथा सुनाते थे, हम लोग आर्ग्यू करते थे बहुत, क्योंकि बहुत गर्व था ना, मेडिकल विद्यार्थी हम लोग हैं, मेडिकल में एडमिशन मिला हुआ है, IIT में मिला था, बहुत गर्व था। तो वो बता रहे थे भगवान के विषय में, प्रसाद दे रहे थे हमको, हम लोग बहुत आर्ग्यू करते थे, एक साल तक ऐसा तीव्र विरोध किया उनको। तो मेरा दोस्त ही था वो, जो मेरे साथ में IIT पढ़ता था, दोनों IIT पास हो गए, वो IIT गया, मैं मेडिकल में गया, और वो भक्त बन गया हरे कृष्णा का। फिर वो मुझे मिलने के लिए आता था, कहाँ से? पवई IIT से जुहू मंदिर जाकर महाप्रसाद लेकर सेंट्रल रेलवे से दो ट्रेन वृद्धि करके JJ हॉस्पिटल में मुझे मिलने आता था महाप्रसाद देने के लिए। और मैं वो उसको क्या कहते हैं हमारी भाषा में उसको, क्या, हाउ टू से दैट, टू इरिटेट हिम. जब वो आते थे ना तब मैं जानबूझ के नॉनवेज ऑर्डर करता था जस्ट टू इरिटेट हिम एंड ईट नॉन वेज. तो जा अभी तू, डोंट कम, डोंट डिस्टर्ब मी एनी मोर. तो एक साल के बाद बेचारा परेशान हो गया और दोस्ती का वास्ता दिया उसने. दोस्ती के वास्ते के लिए एक बार मंदिर आ जाओ. दोस्तों मानते हो ना मुझे? हाँ दोस्त मेरे हो आप निश्चित रूप से. हमने साथ में पढ़ाई किया है, कॉलेज में एंजॉय भी किया है, आईआईटी का पढ़ाई किया है. अब आईआईटी गए, मैं भी वहाँ पर आता हूँ, आप भी आते हो. चलो, वो कहते हैं दोस्ती के लिए एक बार मंदिर आ जाओ. बोला ठीक है चलो. मेरे गर्लफ्रेंड के लोग भी साथ में गया, जो किनारा घूम के गर्लफ्रेंड को बाय बाय किया, फिर वो मुझे मंदिर लेके गया. बोला रात को रुकना है. बोला ठीक है रुक जाएंगे. रात को मंदिर रुके, उसमें 4 बजे उठाया. तो चलो कहाँ जाना है? तो मंगलवार जाना है. ठीक है, एक ड्रम था बड़ा, सब लड़के साथ में स्नान कर रहे थे उसके अंदर, हमने भी स्नान किया वो ड्रम से पानी लेके. और 4:30 को मंदिर में गए, तो सर डिम लाइट था, पूरा ऐसा येलो लाइट था. कुछ सन्यासी लोग जप कर रहे थे, हरे कृष्ण, बहुत सीरीन एटमॉस्फेयर था. ऐसे जवान लड़के हम लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं. उतने में 3 दरवाजे खुले, दिख रहे एक साथ खुल गए. 3 आदमी एक साथ बाहर आ गए. तीनों के हाथ में शंख था, तीनों शंख एक बार उन्होंने बजाए एक साथ. हाँ सब लोग मैं देखते रह गया, अरे क्या कोऑर्डिनेशन है, ज़बरदस्त. देखता रह गया. फिर 3 लोग अंदर गए और 3 पर्दे खोल दिए तीनों ने. उसमें एक में गौरनिताई का मंदिर, एक में राधा रास बिहारी जी ललिता विशाखा, और एक में सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर. 3 मंदिर एक साथ में खुले और 3 अगरबत्तियाँ 3 लोगों के हाथ में, 4 3 3 ऐसे हो गया. फिर दीपक लिया उन्होंने और साथ में तीनों ने दीपक घुमाए भगवान के ऊपर बहुत देर तक. ऐसे करके पूरी आरती, इतना सुंदर कोऑर्डिनेशन था. एंड में वापस बाहर आ गए, शंख लिया और तीनों शंख एक बार खुले. वो 20 मिनट का जो अनुभव था ना, पूरा क्लीन बोल्ड, हृदय पूरा समाप्त हो गया. जितना विद्रोह था, आर्गुमेंट था, सब उस दिन समाप्त हो गया. उसी समय शरणागत हो गया हृदय, उसी समय. शाम तक विद्रोह में था, लेकिन क्या खाना खिलाते हो, क्या तुम्हारे मंदिर में खाना भी अच्छा नहीं है, क्या सुलाते हो, ऐसे सब आर्गुमेंट हुआ. प्रभुपाद जी के ऑर्डर में लेके गए, वहाँ पर एक महाराज थे, उन्होंने प्रवचन दिया था. तभी मन में बहुत विद्रोह था, लेकिन मंगल आरती जब देखा ना भगवान का, सब विद्रोह विद्रोह समाप्त हो गया. उस दोस्त के साथ जितना आर्गुमेंट किया था ना, उसको बोला अभी बताओ क्या करना है. उसने क्या किया, तुलसी मला लिया, गले में बांध दिया. फिर बोला और क्या करना है, एक माला दिया हाथ में. बोला इसको जप करना है हरे कृष्ण मंत्र. बोला कितना करना है? बोला 4 माला करना है. बोला ठीक है और क्या करना है, एक किताब लिया, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान. बोला इसको पढ़ो. बोला और कुछ करना है? तो नॉनवेज छोड़ देना है. बोला छोड़ दिया. जो भी बोल रहा था मैं, इतना आई वॉज सो इम्प्रेस दैट डे, वॉट एवर ही सेड आई एक्सेप्टेड. और घर में आके बोल दिया कि आज से नॉनवेज बंद, तो माता पिता हंसने लगे जोर जोर से. तू छोड़ेगा? मैंने कहा निश्चय तो ले आए. तो पिताजी सोच रहे थे मन में कि जवानी का जोश है, 2 दिन का खेल है, बाद में वापस लाइन पे आ जाएगा. लेकिन उसको आज 33 ईयर्स हो गए. फिर घर में थोड़ा सा गंभीरता लगी, क्या लड़का कहाँ जा रहा है. उसके पहले मेरे पिताजी ना एक बार हॉस्टल में आए थे. क्या बताऊँ आपको, इतने शौकीन थे हम. हमारे दीवार में 1 इंच की जगह नहीं थी जहाँ पर आप 1 लीटर उंगली बीच में रखें. इतने हमारे रूम के अंदर लेडीज़ गर्ल्स के फोटो लगाए थे हमने. वर्ल्ड्स बेस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ वर देर ऑन ईच एंड एवरी वॉल, एवरी इंच वॉज ऑक्यूपाइड बाय देम. यहाँ तक भी यही काफ़ी नहीं था, जब हम सोएंगे बिस्तर पे तो हमारे सीलिंग पे भी लड़कियों के फोटो थे, ताकि जहाँ नज़र डले वहाँ पर सुंदर स्त्री का दर्शन होना चाहिए. तो पिताजी आए एक बार हॉस्टल में, बोले क्या बेटा क्या कर रहे हो तुम. तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था उस समय, लेकिन फोटो निकाले ना मैंने ऐसे रखे, क्योंकि मुझे मालूम था पिताजी एक बार आएंगे, अभी पता नहीं कभी आएंगे वापस. अगली बार जब पिताजी आए ना, तभी उनको थोड़ा सा स्ट्रोक आया था और जे जे में एडमिट हो गए थे. वो एडमिट हो गए, ठीक हो गए, और जब डिस्चार्ज होके मेरे बोले आपके रूम पे जाते हैं, मिल के आते हैं. तो इस बार जो रूम आए थे ना, तो ये सब मेरे दोस्त मुझे 4 फरवरी 1984 में मंदिर ले गए थे. उसके बाद सारे लड़कियों के फोटो निकल गए और मंदिर से एक एक करके जहाँ जहाँ लड़कियों के फोटो थे, सब जगह कृष्ण के फोटो लगाए गए. सीलिंग पे भी चेंज कर दिए. फिर एक रैक था किताबों का मेडिकल का, वो दूसरा रैक भी ले लिया हॉस्टल से, और एक रैक में मेडिकल किताब, एक रैक में पूरा स्पिरिचुअल किताब, 25 माला उधर लटक रही है, कोई आया तो देने के लिए, 10-10 गीता की कॉपी कोई आया तो देने के लिए, 5-5 हर एक किताब की कॉपीज ताकि विद्यार्थी आएंगे तो देने के लिए, ऐसे पूरा एक रैक अलग भरा हुआ है पूरा, क्योंकि हम विद्यार्थी थे ना, तो विद्यार्थियों का उत्साह देख के मंदिर से बहुत सपोर्ट मिलता था, 10-10 गीताएं, 10-10 साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कमिंग बैक, री इनकार्नेशन, बहुत सारी किताबें की अनेक कॉपी ला के देते थे वो, बोले सबको बांटो हॉस्टल में। फिर हर बुधवार में हॉस्टल में प्रोग्राम शुरू कर दिया हमने, हाँ मैं तब तक फाइनल में भी था, थोड़ा सा दादागिरी भी थी हमारी, सबको बुला बुला के लेके आते थे और कथा करते थे और केला काट के सबको प्रसाद बांटते थे। तब ये परिवर्तन बीच में हो चुका था, तब तक 1.5 साल गुजर चुका था। पापा डिस्चार्ज होके आए, देखा तो अरे सब जगह पर लेकिन क्या बताऊँ आपको, जितना दुख उनको लड़कियों का फोटो देखकर नहीं हुआ था, उससे कई गुना अधिक दुख उनको कृष्ण के फोटो देखकर हुआ। लोगा क्या कर रहे हो, कौन से मंदिर में जाते हो, वो फॉरेनर के मंदिर में जाते हो, भारत में कुछ मंदिर कमी है क्या, वो फॉरेनर के पीछे क्यों भाग रहे हो, चिंतित हो गए वो, क्योंकि एक माला नहीं मेरी खुद की, 2500 माला लटक रही है वहां पर, और एक गीता नहीं, 500 गीताएं लटक रही है, तो बहुत चिंतित हो गए वो। फिर तब से विरोध शुरू हुआ घर में हमारे, नहीं जाना है वहां पर, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कई साल लगे उसको, वो उस तूफान को थमने के लिए, और धीरे धीरे सब लोग फिर घर में फेवरेबल हो गए। फिर पिताजी भी लास्ट में ऐसे हाथ जोड़ते हुए भक्तों को प्रणाम करते हुए गुजर गए, ऐसा है। बहुत समय लगा उसके लिए, क्योंकि तो हमारी जो कास्ट है ना, मैं उड़पी से हूँ, और भारत की सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की जाति जो ना, उसमें से हम लोग हैं, गौड़ सरस्वत ब्राह्मण। तो हमारा एक समाज है, उसके अंदर भारत भर में कई मंदिर हैं हमारे, हमारे समाज के, बाणगंगा हमारे समाज की ओंड है, शीतला देवी का मंदिर नव मुंबई, भारत भर में बहुत प्रॉपर्टीज़ है, हमारे गुरु बहुत पावरफुल गुरु हैं। तो उनकी इच्छा थी तुम्हें इतना आध्यात्मिक बनना है तो अपने समाज में क्यों नहीं गुरु का स्वीकार किया तुमने, उधर मंदिर में फॉरेनर के क्यों गए आप? तो हमने उत्तर दिया कि आप हमारे कास्ट के मंदिर में चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिश खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, कोई जप नहीं करता है, ऐसे ही धनी लोग पीछे भागते रहते हैं। हमारे मंदिर में हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, फिश नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, केवल भगवान का प्रसाद खाते हैं, तभी ये कंठी पहनने का अधिकार मिलता है हमको। तो मैं बहुत प्रभावित हो गया था, क्योंकि मेरे पापा को ना हमेशा पूछता था कि हमारे कास्ट में फिश खाते हैं, वो चिकन क्यों नहीं खाते। तो मेरे पापा ने मुझे एक फनी आंसर दिया था कि जिन प्राणियों को आवाज़ करने की शक्ति होती है उनको नहीं खाना चाहिए, जो प्राणी आवाज़ नहीं करते हैं उनको खा सकते हैं। मछली देखो, मछली, केकड़ा, समुद्र का सिंपली जो भी होता है ना, प्रॉन्स वगैरह, आवाज़ करते हैं क्या? नहीं करते ना, उसको खा सकते हैं। देखो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मुर्गा, सब आवाज़ करते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। मुझे कभी भी ये जचा नहीं था आंसर, आई नेवर वॉज कन्विंस विद दिस आंसर, बट व्हेन आई वेंट टू इस्कॉन आई वॉज टोल्ड यू शुड नॉट ईट एनी लिविंग एंटिटीज एक्सेप्ट वेजिटेबल्स, तो बोला दिस इज गुड। सो मैंने ऑन द स्पॉट छोड़ दिया सब कुछ, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं झगड़ा करके घर में नॉनवेज खाता था, लेकिन संतों का आशीर्वाद था, कृपा थी, सत्संग भी बना रहा तो निश्चय भी बना रहा। और फिर मेरे हॉस्टल में, मेरे रूम में हमारे हॉस्टल मेट्स थे ना, वो अलग अलग प्रकार की स्वादिष्ट चाय पीने के लिए आते थे, क्योंकि मैं मशहूर था बहुत, कभी अदरक की चाय, कभी इलायची की चाय, कभी मसाले की चाय, कभी ये चाय, कभी वो चाय, कभी प्लेन चाय, कई पैकेट थे मेरे रूम में। 2 जुलाई 1985 को मैंने सारे पैकेट उठाकर फेंक दिए, उसके बाद में कभी चाय नहीं पिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो सब मन का व्यसन है पूरा वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर संत लोग, भक्त लोग नहीं मिले होते तो हमारी कई दिव्य योजनाएं थी क्या क्या करना है। हाँ अभी कह नहीं सकता आपको यहाँ व्यासपीठ पे बैठकर क्या क्या मन में प्लानिंग था हमारा, क्योंकि तो तेज़ दिमाग था ना, तो तेज़ दिमाग की तेज योजनाएं थी हमारी, सारे अदब पतन की योजनाएं थी, ऑल प्लानिंग्स, ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ फॉलिंग डाउन, उसमें सब प्रकार के पाप सम्मिलित थे, ऐसी हमारी योजनाएं थी युवावस्था में। लेकिन सही समय पर ये मेरे मित्र जो थे वो मुझे मिले दोबारा एक बार, उसने ज़बरदस्ती मेरी गाली खा खा के मुझे मंदिर में लेके गए, मेरा परिवर्तन हुआ, इसलिए आपके सामने आज बैठा हूँ, मैं धन्य होकर बैठा हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसी मेरी अनुभूति हृदय में मेरे लिए है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया, संत गुरु के रूप में प्राप्त हो गए, अच्छा सिद्धांत मुझे मिला और मैंने जीवन पूर्ण उसमें समर्पित कर दिया। आज मैं इतना संतुष्ट हूँ हर प्रकार से, कभी भी मृत्यु आए तो मैं तैयार हूँ। आई एम सो सेटिस्फाइड विथ माई पर्पज ऑफ लाइफ, जो मैं कर रहा हूँ, जो पहले किया आगे करने जा रहा हूँ, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। आई डोंट हैव एनी एम्बिशंस, बिग एम्बिशंस। आई ओनली हैव वन एम्बिशन दैट आई शुड रीड ऑल द स्क्रिप्चर्स। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी, वो सब जीवन के अंत के पहले सब अच्छी तरह से पढ़ूँ और सबको बताऊँ जो पढ़ा है और सबको सुनाते रहूँ, ये मेरी एक ही एम्बिशन है। बाकी सारी एम्बिशन भगवान देख लेंगे, कहाँ ले जाना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ सेवा देना है। जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ सेवा देंगे, इतना विश्वास है। आज जो कर रहे हैं उसी में आगे भगवान लगा देंगे, इसमें विश्वास है हमारा। तो तात्पर्य ये है, आपको विनती यही है कि तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो भक्ति का आनंद प्राप्त करता है वो अकेला कोने में बैठकर आनंद को अनुभव नहीं कर सकता, वो आनंद वो बांटे बिना रह नहीं सकता। तो ऐसा दिव्य आनंद प्रभुपाद जी लेकर अमेरिका गए थे, उन्होंने वहां पर सब लोगों को भक्त बनाया, फिर भारत में आए और भारत में जब विदेशी भक्त देखे तो हमारे फॉर्चुनेट इंडियंस भक्त बने तब तक नहीं बने, 30 साल यहाँ पर प्रयास कर तब नहीं बने। जब विदेशी भक्तों को लेकर आए ना तो बोला ये इम्पोर्टेड है, ये आप लोग अच्छा लगे। अपने को सब कुछ इम्पोर्टेड चाहिए, भक्ति भी इम्पोर्टेड चाहिए, फॉरेन रिटर्न चाहिए तभी लेंगे। तो वही प्रभुपाद है हमारे इंडियन, वो फॉरेन के भक्तों को लेकर आए तो यहाँ के भक्त बने। और जिस दिन मैं पहले दिन मंदिर गया था ना तो वहाँ पर फिर जाने लगा हर संडे को। हमारे मंदिर में कैसा ना, प्रसाद इज़ वेरी फेमस, मिनिमम 15 आइटम्स। हम लोग भी जवान थे बहुत, जिम्नेशियम जाते थे, दो दो थाली के खाते थे। संडे में प्रवचन शुरू हुआ दोपहर में, ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल्स, ऑल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, PhDs, ऑल बिग गाइज, MBAs, मैनेजमेंट, उनके लिए अलग प्रोग्राम होता था। भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट वहाँ पर दोपहर को होता था, उसमें हम जाते थे। तो पहली बार गया ना तो एक विदेशी व्यक्ति जो PhD है, स्वयं इंजीनियर कम PhD, सर मुंडवा के ब्रह्मचारी बना हुआ है और अस्खलित संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण कर रहा है और गीता पर प्रवचन दे रहा है और मैं सुन रहा हूँ। मुझे इतनी शर्म आई उस दिन कि मैं साउथ इंडियन ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है ये लोगों को प्रवचन देना और मैं एक विदेशी आदमी के मुख से संस्कृत श्लोक और प्रवचन सुन रहा हूँ, कितनी शर्म की बात है। ऐसा मुझे अंदर में बहुत फीलिंग हुई, मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। वो व्यक्ति की प्रेरणा से मैं भक्त बना जो पथकथा कर रहा था उस समय, क्योंकि हमारा काम है ये, भारतीय लोगों का काम है, हमारी संस्कृति है, हमारा नॉलेज है, हमारे पुराण है, हमारे वेद हैं, उन्होंने पढ़े हैं और वो पढ़ के हमको सिखा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। ये भाव से मैं इसमें सम्मिलित हो गया। आई गॉट अटैच बिकॉज ऑफ दिस, आई फेल्ट वेरी अशेम्ड। आई थॉट आई शुड लिव लाइक अ ब्राह्मिन, टू ब्राह्मिन, एंड प्रभुपाद जी के और गुरु की कृपा से आज मैं वैसे जी रहा हूँ। बाय द वे मैं पुरोहित भी हूँ, मैं हरे कृष्णा में संप्रदाय के भक्तों का विवाह भी कराता हूँ, उपनयन भी कराता हूँ, गृह प्रवेश कराता हूँ, वास्तु यज्ञ कराता हूँ। अभी कल मैं यहाँ से अभी जाऊँगा आपसे मिलने, 2 बजे निकल जाऊँगा और कल थाना नासिक में हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं वो, उनके पुत्र का उपनयन संस्कार में कल करने जा रहा हूँ। मेरी बहुत तमन्ना थी कि आदर्श ब्राह्मण का जीवन जीना चाहिए वैष्णव की तरह, और सभी इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी, हर प्रकार का भगवान ने मौका दिया है, अवसर दिया है, और आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों को बात करने का मौका भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी हमारा व्यवसाय है, आमदनी है, सब चलते रहता है, लेकिन वी डोंट लिव फॉर दैट, वी लिव फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड, और लाइफ इज मेंट फॉर प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन बिफोर वी डिपार्ट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग, व्हाट एवर आई हैव सेड इन बिटवीन, एनी स्टोरी, एनी क्वेश्चन यू हैव, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी अ लास्ट मीटिंग विथ यू, आई वॉन्ट इट टू बी बिगिनिंग ऑफ ऑल इटर्नल फ्यूचर मीटिंग्स एज दिस मीटिंग। प्रभु जी सब लोगों का फ़ोन नंबर मुझे देना, तो मैं आपको बताते रहूँगा अगले कार्यक्रम कहाँ कहाँ हैं, कहाँ यात्राएँ हमारी है, कहाँ यात्रा लेके जाने वाले हैं, सब जगह पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और संपर्क बनाए रखेंगे आपसे। यस, वो दे देंगे ना आपको सब, अभी लिख लीजिए सब लोग, कोई लिखना है तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो।